प्रणीते देवक्या रोहिणीं जोगनिद्रया अहो विसंश्रुतः गर्भ इति पौरः विचक्रुषु गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं जोगनिद्रया अहो विंस्त्रासितो गर्भा अहो विंसस्त्रितो गर्भा इति पौराभिचक्रुषु गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं जोगनिद्रया अहो विंसंस्थितो गर्भा इति पौराभिचक्रुषु दामोदर लेडीज और कोई गर्भे जब गर्भ प्रणीते ले जाया गया देवक्या देवकी की रोहिणी रोहिणी के गर्भ में जोग निद्रया जोग माया द्वारा अहो हाय विसंस्त्रिता नष्ट हो गया गर्भ इति इस प्रकार पौरा घर के रहने वाले पूर्ववासी विचक्रुषु विलाप करने लगे। जब जोग माया द्वारा देवकी का बालक खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया तो देवकी को लगा कि उसे गर्भपात हो गया, फलतः महल के सारे निवासी जोर शोर से यह कहकर विलाप करने लगे, हाय देवकी का बच्चा जाता रहा। तात्पर्य, महल के सारे वासियों में कंस भी सम्मिलित था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे तो दयावश कंस भी यह सोचकर उसके साथ विलाप करने लगा कि हो न हो दवाओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से सिकुड़े आप लोग शांत रहें, कोई बात नहीं करेगा। अन किसी बाहरी कारण से देवकी का यह गर्भपात हो गया, किंतु हरिवंश में जोग माया द्वारा देवकी के गर्भ से बालक को खींच करके रोहिणी के 7 मास के गर्भ में स्थापित करने की पूरी कथा वर्णित है। अर्धरात्रि में गहरी नींद में सोते सोते रोहिणी को लगा मानो उसने कुछ समय बाद लगा मानो सपने में उसे गर्भपात हो गया। कुछ समय बाद जब वह जगी तो उसने देखा कि सचमुच ऐसा ही हो चुका है, अतः वह बहुत चिंतित थी। किंतु जोग माया ने उसे बताया, हे सुबह, तुम्हारे बालक को पुनः स्थापित किया जा रहा है। मैं देवकी के गर्भ से बालक खींच रही हूँ, इसलिए तुम्हारे बालक का नाम संकर्षण होगा। जोग निद्रा शब्द महत्वपूर्ण है। अब आत्म साक्षात्कार द्वारा मनुष्य अध्यात्म से पुनः जुड़ता है, तो मनुष्य अपने जीवन को सपनोत मानता है। भगवत गीता में कहा गया है, या निशा सर्वभूतानि तस्या जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। ये स्थान खाली क्यों है? सब उधर बैठ रहे हो, इधर आ जाओ। चंदन उधर क्या कर रहा है? जो सभी जीवों के लिए रात है, वह स्वामी पुरुषों के लिए जगने का समय है, और जो सारे जीवों के जगने का समय है, वही मुनियों के लिए रात होती है। आत्म साक्षात्कार की अवस्था जोग निद्रा कहलाती है। इस अवस्था में सारे भौतिक कार्यकलाप सपनवत प्रतीत होते हैं। इस तरह जोग निद्रा की व्याख्या जोग माया के रूप में की जा सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्निर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान जोग माया को बताए कि उसे क्या करना है। उसके बाद जोग माया क्या की है, इसका वर्णन इन श्लोकों में किया जा रहा है। श्लोक 14 में संदिष्ट्वैं भगवता तथा इत्यो इति तद्वचः प्रतिगृह परिक्रम्य गाम गता तत्तथा करोत। इस श्लोक में बताया गया है संदिष्टः, सम आदिष्टः, सम्यक रूप से आदेशित की गई थी जोग माया कि उसे क्या करना है। आदेश देना एक बात है, लेकिन उसको समझना दूसरा बात है। जैसे मंदिर के अधिकारी लोग आदेश देते हैं, तो हम लोगों को पहले उस आदेश को समझना चाहिए, और जो समझ जाता है वही सम्यक रूप से उस कार्य को करता है। जो व्यक्ति आदेश को समझता नहीं है समुचित रूप से, वह कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। इसीलिए यहां पर शब्द आया हुआ है संदिष्ट्वैं। आदेश सम्यक रूप से दिया गया और जोग माया सम्यक रूप से उसे समझी। ये आदेश किसका था? भगवता, ये भगवान का आदेश था। तो भगवान का आदेश सबको पालन करना पड़ता है। कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि मैं भगवान का आदेश पालन नहीं करूंगा। अब हम लोगों के पास इंडिपेंडेंट है, उस इंडिपेंडेंस का हम लोग सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। भगवान का आदेश है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब कुछ छोड़ करके एकमात्र मेरे शरण में आओ। जो बुद्धिमान लोग हैं वे भगवान के शरण में जाते हैं, और जो मूर्ख लोग हैं वो डंडा खा करके तब जाते हैं। जाना तो है ही, अब डिपेंड करता है कि हम स्वेच्छा से जाएं कि डंडा खा करके जाएं। जो स्वेच्छा से नहीं जाता है तो माया विभिन्न प्रकार से डंडा खिलाती है, और उतना पर भी होश हवास नहीं आता है तो भगवान काल के रूप में आते हैं। लेकिन शरण तो लेना ही है, तो आदेश का पालन करना बहुत जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति हो उसे आदेश का पालन करना चाहिए। यदि वो सुखी रहना चाहता है, प्रसन्न रहना चाहता है, तो आदेश का पालन करना चाहिए। मंदिर है, मंदिर में व्यवस्था है, मंदिर के व्यवस्था का आदेश पालन करना सभी भक्तों का धर्म है। पहले समझें और बाद में पालन करें। इसीलिए यहां पर शब्द आया हुआ है भगवता, भगवता मतलब भगवान का आदेश है। तो भगवान का आदेश जोग माया क्यों नहीं पालन करेंगे? तो संविष्ट भगवता तथा तयह इति तदवचः, तब जब उन्होंने आदेश दिया तथा इति, इसलिए जोग माया हां जो कहते हे प्रभु वैसा ही होगा, तदवचः जैसा भगवान ने कहा था वैसा ही। तथैन य इति तदवचः, इसमें ओम शब्द आया हुआ है, यानी भगवान को सम्मान करते हुए कि भगवान के वचन का वैसा ही वो पालन करेगी। अब कहने से ही नहीं, श्रियस्थी माया जोग माया कि भगवान के आदेश का पालन करेंगी, इसीलिए क्या करती है, दिखलाती है कि मैं आपके आदेश का पालन करूंगी। लेकिन आदेश पालन में भगवान का कृपा होना जरूरी है, आदेश को भूलना नहीं चाहिए। इसीलिए प्रति गृह्य परिक्रम्य, उनको ग्रहण कर करके समझ करके आदेश को, आदेश का पालन करने अब जोग माया चल रही है तो क्या कर रही है, परिक्रम्य परिक्रमा कर रही है कि भगवान का जो आदेश है यथावत मैं पालन कर सकूं, भगवान हमारे जीवन के केंद्र बिंदु बने रहें। वैसे ही आज भी बहुत से लोग मंदिर में जब जाते हैं, सभी मंदिरों में परिक्रमा मार्ग होता है, और परिक्रमा करनी चाहिए कि भगवान हमारे जीवन के केंद्र बिंदु बने रहें। तो यहाँ पर जोग माया परिक्रमा की कि भगवान जो आदेश दिए हैं उस आदेश को मैं यथावत पालन कर सकूं, एज इट इज पालन कर सकूं, इसलिए भगवान का वह परिक्रमा की कि भगवान हमारे केंद्र बिंदु बना रहे। गाम गतहा, गाम मतलब पृथ्वी, यानी जहां भगवान आने के लिए कहे थे जोग माया को कि तुम गच्छम देवी ब्रजे, इसके पहले गच्छम देवी ब्रजम भद्रे गो गोपी गोभी अलंकृतम, ब्रज में आने के लिए है। और वहां आकर क्या क्या काम करना था भगवान सब बता दिए थे, तो उसके अनुसार वह गाम मतलब पृथ्वी पर आई। जिस प्रकार से भगवान आदेश दिए थे वैसा आदेश पालन करने के लिए। तो पहला आदेश का पालन यहाँ पर बताया गया है, गर्भे प्रणिते देवक्या रोहिणीम जोग निद्रया। गर्भे प्रणिते, पहले गोकुल न जाकर के मथुरा आई और मथुरा से आकर के देवकी के गर्भ में जो भगवान स्थित थे बलराम जी, उनको वहाँ से निकाली। पीछे मैं बताया था कि बलराम जी को क्यों निकाली। बलराम जी देवकी के गर्भ में आए थे टेम्पररली, ऐसे वे हमेशा रोहिणी के ही पुत्र हैं। बलराम जी इटरनली रोहिणी नंदन हैं, देवकी नंदन नहीं है। तो एक तो कारण यह था, दूसरा बलराम जी एक विशेष कार्य के लिए देवकी के गर्भ में आए थे और वह काम था देवकी का गर्भ साफ करना। वहां पर असुर लोग थे, गंदा कर दिए थे, सफाई करना था। और तीसरा कारण था कि कंस को भ्रम में डालना। जब गर्भच्युत हो जाता है या संतान मर जाते हैं तो उनकी गणना संतानों में नहीं की जाती है। तो कंस भ्रमित रहेगा जब कृष्ण आएंगे आठवें गर्भ में, तो कि आठवां गर्भ है कि सातवां गर्भ है उसे कंस को पता नहीं चलेगा, वो थोड़ा बिल्डर रहेगा। तो बलराम जी अपना काम कर लिए, अब उनका काम खत्म हो गया था, तब जोग माया से भगवान उनको ट्रांसफर करा रहे हैं। तो देवकी के गर्भ से निकाल लिए, अब रोहिणी के गर्भ में। तो हरिवंश पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि सातवें महीना से ही कंस पूर्णतया व्यवस्था करके रखा था, केवल सिक्योरिटी गार्ड का ही स्पेशल व्यवस्था नहीं किया था, पूर्व के स्त्रियों का व्यवस्था किया था और कुछ हिंजड़ों का भी व्यवस्था किया था, क्योंकि उन लोगों को पता चले, क्योंकि नाराज जी कह सकते थे कि कोई बच्चा हो सकता है, तो सातवां भी आठवां हो सकता है। तो सातवां के बाद थोड़ा अब तो अंत हो रहा था ना, सात आठ, तो स्त्रियां जो थी उनका काम था पता लगाना कि देवकी रजस्वला को कब प्राप्त कर रही है। और हिंजड़े लोग जाकर के गाते बजाते हैं, कोई स्त्री गर्भवती हो या संतान उत्पन्न हो। तो हरिवंश पुराण में इसका वर्णन किया गया है कि वो सब कंस व्यवस्था किया था। सातवें गर्भ के विषय में कंस को मालूम था। ये सातवां गर्भ हरिवंश पुराण के अनुसार सात महीना के थे, बल्लवाचार्य के अनुसार छह महीना के थे। तो जो भी है, ये सातवां गर्भ थे, सात महीना के थे दाऊ जी। तो सात महीना में उनको वहां से आकर्षित किया गया। अब प्रश्न उठता है कि सात महीना तक देवकी के गर्भ में क्या था। तो आचार्य ग्रहण वर्णन किए हैं कि वहां पर केवल वायु था, सॉरी रोहिणी के गर्भ में वायु था। हालांकि श्रीपाद जी गोस्वामी कोट किए हैं हरिवंश पुराण से कि देवकी के गर्भ में देवकी संतान को देखी, स्वप्न हुआ, जोग माया स्वप्न दी। यहां पर जोग निद्रया शब्द आया हुआ है, जोग माया का एक अंश है। यहां पर ऐसे सो गए थे सब लोग, देवकी भी और रोहिणी भी, कि गर्भच्युत हुआ कुछ पता भी नहीं चला। एनेस्थीसिया स्ट्रांग जोग माया ने दिया था जोग निद्रा के रूप में। लेकिन जोग निद्रा और निद्रा में अंतर होता है। जैसे जब भगवान वहां से आ रहे थे, जब भी आए, चाहे बलराम जी के रूप में आए, चाहे कृष्ण के रूप में आए, जय श्री श्री गौर निताय की जय, तो माया देवी के प्रभाव से जितने मथुरावासी थे वे डीप स्लंबर में चले गए थे, बुरी तरह से सो गए थे, पता ही नहीं चला क्या हुआ। और वैसे ही रोहिणी भी सोई हुई है, वो भी डीप निद्रा में सोई है, लेकिन डीप निद्रा में सोने के बाद भी स्वप्न देख रही है। और उन्हें स्वप्न देखा कि किस प्रकार से उनका गर्भ चित हुआ और उन्हें प्रसव का पीड़ा हुआ। और जैसे हम स्वप्न देखते हैं और कभी कभी भयावह स्वप्न होता है तो हम लोग जग जाते हैं, सोचने लगते हैं, तो वैसे ही रोहिणी जग गई, खड़ा हो गई और इतना प्रसव का पीड़ा था कि वो खड़ा भी नहीं हो पाई, पुनः बिस्तर पर गिर पड़ी। ये सब जोग निद्रा का प्रभाव है। और तब जोग निद्रा ही वहां पर बताई उनको बलराम जी के विषय में कि ये तुम्हारे पुत्र हैं और ये संकर्षण कहलाएंगे, और फिर सो गई। जब सुबह हुई तो ऐसा कुछ पता नहीं चला। एनीवे, तो गर्भे प्रणते देवक्या रोहिणीम जोग निद्रया अहो विनसरितो गर्भ। अब इधर तो गोकुल में जो हुआ वह हुआ, अब इधर मथुरा में क्या हो रहा है। अहो बिन संतितो हो, श्रतित धातु है और बिन श्रतित कृदंत लगा हुआ है, बी कृदंत लगा हुआ है, तो जो निकलता है जिसे हम स्रोत कहते हैं, पानी का स्रोत, पानी निकलता है ना तो कहते हैं स्रोत, पानी का एक स्रोत है, तो संसित यहां पर भी वैसा ही शब्द है, स्रोत मतलब निकलना और विसंस्रिता मतलब विशेष रूप से निकलना। देवकी को पता भी नहीं चला, इसलिए यहां पर विसंस्रितो शब्द आया हुआ है, विशेष रूप से ऐसा गर्भ बाहर निकला कि प्रसव का पीड़ा थोड़ा भी नहीं हुआ देवकी को। गर्भ इति पौरा विचक्षु, और सुबह जब सब लोग जगे तो देवकी तो दुखी थी ही, साथ साथ जो पूर्ववासी थे वे लोग भी बड़े दुखी थे। पहले जमाने में या शास्त्र के अनुसार यदि किसी स्त्री का गर्भच्युत हो जाता है तो उसे शुभ नहीं माना जाता है, अशुभ माना जाता है, वो पाप है, गर्भच्युत होना एक तरह से पाप है। ये तो नेचुरली गर्भच्युत हो जाता है, हुआ है या होता है, जिसे पाप लोग कहते हैं। आजकल तो गर्भच्युत कराते लोग हैं, अबॉर्शन कराते हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा पाप है। नेचुरल गर्भच्युत होता है उसको भी पाप कहा जाता है। देवकी और वसुदेव जी धर्मात्मा थे, देवकी को सब लोग सम्मान करते थे, तो यह गर्भच्युत हुआ तो सब लोग दुखी थे। प्रभुपाद जी बताएं कंस भी दुखी था। कहा जाता है कि यदि किसी के घर में आनंद हो, आनंद का शुभ अवसर हो और वहां आप न जाओ, काम चल सकता है, चलेगा। किसी के यहाँ बच्चा जन्म लिया है और बर्थडे पार्टी मनाया जा रहा है, वहां पर मत जाओ, काम चलेगा। लेकिन किसी घर में देहांत हो गया है तो वहां जाना चाहिए, वहां न जाना वो दुख का कारण हो सकता है। तो भले कंस का दुश्मनागत था लेकिन देवकी से नहीं था, देवकी के आठवें गर्भ से था जो कि उसका काल होने वाला था। देवकी को तो बहुत प्यार कर रहा था और यह विपत्ति का समय था कि गर्भच्युत हो गया है, विपत्ति का समय था, इसलिए कंस भी दुखी था। प्रभुपाद जी यहां तत्पर बताए हैं कि महल के सारे वासियों में कंस भी सम्मिलित था। जब सारे लोग विलाप कर रहे थे तो दयावश कंस भी यह सोचकर उसके साथ विलाप करने लगा कि हो न हो दवाओं के कारण या अन्य किसी बाहरी कारण से देवकी का यह गर्भपात हो गया। अन्य पुरवासी लोग सोचते थे कि कंस के भय से यह गर्भपात हुआ है और कंस सोच रहा है कि कुछ दवा इत्यादि देवकी ली होगी जिसके चलते यह गर्भपात हुआ। वही कंस यदि बच्चा जन्म लेता, एक सेकेंड मान लिया जाए, यदि बच्चा जन्म लेता तो कंस को दुख नहीं होता, तब तो उसे गुस्सा होता उस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन वह च्युत हो गया तो कंस भी दुखी था। तो यह पता चलता है कि पहले सभ्यता संस्कृति कितनी महान थी। दुश्मन को भी लोग जानते हुए भी दुश्मन को सम्मान कर देते। कई एक उदाहरण है, जैसे द्रोणाचार्य। आप लोग जानते हैं कि धृष्टद्युम्न का जन्म हुआ था द्रोणाचार्य का वध करने के लिए, और धृष्टद्युम्न शिक्षा प्राप्त करने गए किसके पास? द्रोणाचार्य के पास। द्रोणाचार्य जानते थे कि मेरा दुश्मन है, लेकिन फिर भी उसे वे शिक्षा दिए, जानते हुए भी शिक्षा दिए। तो द्रोणाचार्य तो खैर साधु महात्मा एक तरह से गुरु जी हैं, ब्राह्मण हैं, उनका छोड़िए। जरासंध, जरासंध वध का कथा देखा जाए, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका थे तो उनके पास एक पत्र आया जिसमें जरासंध 99 राजाओं को बंदी बनाया था। 99 ना असीम जी कि 90? 90 कि 99 मुझे याद नहीं आ रहा, 90 ऐसे कुछ, और 10 या एक राजा की और प्रतीक्षा थी। 99 थे, एक राजा की प्रतीक्षा थी। तो 100 राजाओं का वो बलि देने वाला था। तो उन राजाओं ने पत्र लिखा कृष्ण के पास रक्षा के लिए, और उसी समय एक और पत्र आया, पोस्टमैन साथ में दो पत्र लेकर आया, और एक पत्र था महाराज युधिष्ठिर का जो राजस्व यज्ञ कर रहे थे, वो भी भगवान को आमंत्रित किए थे। तो एक आनंद का पत्र था और एक दुख का पत्र था। अब भगवान श्री कृष्ण के पास दोनों पत्र आया, दोनों शरणागत हैं। युधिष्ठिर तो बचपन से शरणागत हैं और ये राजा लोग अब शरण में आए हैं, जब दुख पड़ा है तब, लेकिन कृष्ण के शरण में आए हैं। कृष्ण शरणागत वत्सल हैं, कोई यदि कृष्ण के शरण में जाए किसी प्रकार से तो कृष्ण उसका रक्षा करते हैं। वे शरणागत वत्सल कृष्ण सोचने लगे मैं करूं क्या, एक तरफ महाराज युधिष्ठिर हैं और एक तरफ ये राजा लोग हैं। तो भगवान कृष्ण यदि नीति देखा जाए तो नीति के अनुसार क्या होना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? जिसके पास विपत्ति है उसके पास जाना चाहिए ना, उनके पास जाना चाहिए। और उधर महाराज युधिष्ठिर हैं जो कि बचपन से ही स्नेही हैं, कृष्ण के शरणागत हैं। ये नए सिखुआ नौसिखुआ नए लोग आए और वो पुराने हैं। तो भगवान कृष्ण उद्धव जी को बुलाए, जो उनके मंत्री थे, विष्णाम प्रबरह मंत्री, विष्णु में सर्वश्रेष्ठ थे उद्धव जी, जो कृष्ण के मंत्री थे, कृष्ण के सखा भी थे, मंत्री भी थे। तो उनसे पूछा गया क्या करना चाहिए। भगवान जानते थे, लेकिन फिर उद्धव जी को क्रेडिट देना चाहते थे। तो उद्धव जी ने कहा कि आपको सर्वप्रथम महाराज युधिष्ठिर के पास जाना चाहिए। तो कृष्ण को थोड़ा लगा, क्यों, अरे तकलीफ में तो राजा लोग हैं, उनके पास कैसे जाऊं। तब उद्धव जी ने कहा कि आप यदि जाना चाहें राजा, मच्छर लगता है बहुत ज्यादा हो गए हैं मंदिर में, यदि राजाओं के पास आप जाओगे तो कंस आज के दिन जरासंध को मारना बड़ा मुश्किल है, और आप जरासंध को मारें वो भी उचित नहीं है, इसलिए आप जाएं और युधिष्ठिर के पास केवल विजिट करने जाएं। और युधिष्ठिर महाराज तब तक से ये राजस्वीय यज्ञ नहीं कर सकते हैं जब तक से सब राजा उनका शरण ग्रहण न कर ले। सब तो कर लिए हैं लेकिन जरासंध नहीं किया है, तो इसे भी करना है। तब उद्धव जी कहे कि आप जाएं और अर्जुन और भीम को लेकर के मगध जाएं, जरासंध के नगरी जाएं, लेकिन आप लोग सतर्क रहिएगा, जरासंध जो है वह विष्णु से द्रोह करता है लेकिन ब्राह्मणों को बहुत सम्मान करता है, तो आप लोग ब्राह्मण बनकर के जाइएगा। एनीवे, जैसा जैसे उद्धव बताए थे भगवान कृष्ण वैसे ही किए। अब जरासंध के पास पहुंचे अर्जुन, भीम और कृष्ण, और तीनों ब्राह्मण का रूप धारण किए थे। जरासंध से मिले तो जरासंध पहचान रहा था कि ये लोग कौन है, ये लोग ब्राह्मण नहीं है, ये लोग ब्राह्मण नहीं है, इनका चाल चलन शारीरिक बनावट ये ब्राह्मण जैसा है नहीं, उसे कन्फर्म था कि ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय है। उतना ही नहीं था, उसे ये भी कन्फर्म था कि ये भीम है, अर्जुन है और कृष्ण है। जब विदाई हो रही थी इन लोगों की तो जरासंध ने पूछा कि आप लोग कुछ चाहिए, कुछ और अंतिम इच्छा हो। तो भीमसेन ने कहा कि हम आपसे मल युद्ध चाहते हैं। तो जरासंध समझ गया कि मल युद्ध चाहते हैं मतलब कि ब्राह्मण तो है नहीं। तब जरासंध स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण, तू तो कितने बार मुझसे युद्ध में भाग गया है, तो तुमसे, तुम तो डरपोक आदमी है, तुमसे युद्ध करने से कोई फायदा नहीं। अर्जुन से लड़ूंगा तो अर्जुन मुझसे छोटा है, यदि मैं पटका जाता हूं तभी नाम बदनामी होगी और पटकूंगा तभी नाम बदनामी होगी, तो अर्जुन से भी लड़ने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, भीम है तो भीम से लड़ सकते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि असुर लोग भी जानते हुए कि मेरा शत्रु है, लेकिन फिर भी वे लोग सम्मान करते थे, शत्रु का भी सम्मान करते थे। तो कंस और यहां पर देवकी के प्रति सम्मान दर्शाया है, सम्माननीय थे भी देवकी और वसुदेव, और विपत्ति का समय सब लोगों को साथ होना चाहिए। तो इस प्रकार से पूर्ववासी लोग विलाप कर रहे थे, दुखी थे। तो ये तो परिदृश्य रहा मथुरा और गोकुल का। अब सात गर्भ खत्म, अब आठवें का समय आ गया है। तो ये नहीं कि नेक्स्ट डे ऐसा हुआ, कुछ समय बीता, तदुपरांत देवकी पुनः रजस्वला को प्राप्त की। ये बात समझने योग है, ये आगे का श्लोक 16वां श्लोक है। यहां पर भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयम कर आविवेशान आविवेशांश अंश भागेन मन आनंद अनकदुंदवे। भगवान अपि विश्वात्मा, भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान है, सबके सुख दुख से अवगत है। भगवत गीता के 13वें अध्याय में वर्णन किया गया है हम में और भगवान में अंतर क्या है। हम अपने देह के सुख दुख को जानते हैं, लेकिन भगवान सबके देह के सबके सुख दुख को जानते हैं। इसीलिए यहां पर सदा विश्वात्मा, भगवान विश्वात्मा है, सबके सुख दुख को जानते हैं और विशेष करके भक्तों का। तो भक्तानाम अभयम कर, भगवान आए हैं। मैं पहले बताया था हेतु, कारण क्या था, भक्तों के दुख को दूर करने के लिए। दुख हुआ था समय के द्वारा, कंस के द्वारा और अज्ञानता के द्वारा। समय के द्वारा देवकी को दुख हुआ था, देवकी वस्तु को, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। असुरों के द्वारा माता पृथ्वी को दुख हुआ था और अज्ञानता के चलते ब्रजवासी इत्यादि अन्य जितने भक्त हैं उनको दुख था। तो सबके दुख को दूर करने के लिए, भक्तानाम अब हम लोगों के दुख को दूर करने के लिए, यदि भगवान नहीं आए होते, विभिन्न प्रकार का लीला नहीं किए होते, तो हम लोग कहां से कथा सुनते। भगवत विमुखता दुख का कारण है और भगवत सम्मुखता सुख का कारण है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना आनंद का कारण है, चैंट एंड बी हैप्पी, और माला केवल लटकाए रहना और जप न करना ये दुख का कारण है। सिंपल है दिस। इसलिए हम लोगों को हमेशा जप करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम। तो भक्तानाम बहुवचन, जितने भी भक्त हैं, अभयम करम, उनको अभय करने के लिए। जो भी अभय होना चाहता है उसे भगवान के लीला गुण रूप नाम का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कृतव्यश्च, श्रोतव्य स्मर्तव्य कृतव्यश्च, इच्छताम अकुतो भयम्। जो अभय होना चाहता है, इच्छताम जो इच्छा करता, अभयम जो अभय होना चाहता है, उसे भगवान का कथा कीर्तन अहर्निश सुनते रहना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभया चरणारविंदरे। भगवान अभय चरण है, जो उनके का शरण ग्रहण करता है, जो उनके चरणों में आश्रय ग्रहण करता है, उसके लिए कोई दुख नहीं है। इसलिए कहा भक्तानाम अभयम करम। समाश्रित जे पद पल्लवम प्लवम महत् पदम पूर्ण यशो मुरारे भवाम्बुधि वश परम पदम 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 जाद विपदम नतेषाम। जो भगवान का शरण ले लिए हैं उनके लिए संसार का जो दुख है तुच्छ है। वश पदम गाय के बछड़े के खुर से जो गड्ढा बनता है और उसमें पानी होता है, उसको पार करने में कोई तकलीफ नहीं है। तो जो व्यक्ति भगवान का शरण ले लिया है, उसके लिए संसार का दुख जो है वो गाय के बछड़े के खुर से बने हुए गड्ढे के समान है। और जो शरण ग्रहण नहीं किए हैं, वो संसार सागर के समान है उनके लिए। तो पदम पदम जत विपदम नतेसाम, पग पग पर उन्हें विपत्तियां हैं। तो जो व्यक्ति भी अभय को प्राप्त करना चाहता है, भय मुक्त होना चाहता है, उसे मंगलारती आना चाहिए, जप करना चाहिए, क्लास आना चाहिए, संध्या आरती आना चाहिए, सेवा 8 घंटा करना चाहिए। भक्तानाम अभयम करम, ये भगवान का कृपा है। भगवान हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दिए हैं, सुअवसर दिए हैं, जिसे हम भगवान का नाम ले सकते हैं, भगवान का कथा कह सकते हैं, भगवान का सेवा कर सकते हैं। यदि भगवान कृपा न करें तो जिह्वा रहते हुए भी हम नाम जप नहीं कर सकते हैं, कान रहते हुए भी कथा सुन नहीं सकते, मन नहीं करे कथा सुनने में। जय श्री गौनिताय की। तो ये वास्तव में भगवान की अहेतु की कृपा है जो कि हम लोग नाम जप कर पा रहे हैं। इस कृपा का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए हम लोगों को। तो भक्तानाम अभयम करम, भक्तों को अभय करने के लिए भगवान जो सबके शुभ चिंतक हैं, सबके सुख दुख को समझते हैं, वे भगवान आविशेष आ गए, प्रवेश किए। कैसे? अंश भागेना, याद रखना चाहिए। ब्रजनंदन श्याम सुंदर वो तो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रज में आते हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ब्रज में आते हैं, लेकिन चतुर्व्यूह में जो वासुदेव हैं, वासुदेव संगठन अनिरुद्ध प्रद्युम्न, उसमें से जो वासुदेव हैं वे भगवान आए यहां पर मथुरा में। इसलिए सुखदेव गोस्वामी फिलोसफिकली बिल्कुल क्लियर करते हैं, अंश भागे न, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं आए, उनका एक अंश आया और वे थे वासुदेव। हां, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आए, जीव गोस्वामी के अनुसार वे आए माता जसोदा के यहां, वसुदेव जी के मन में आए पूर्ण पुरुषोत्तम। तो दोनों मन में आए, इधर सॉरी वसुदेव जी के और उधर नंद बाबा के। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नंद बाबा के मन में आए और उनके अंश वासुदेव जो हैं वह वसुदेव जी के मन में आए। तो अंश भागे ना, अंश भाग से मन अनकदुंदभी के मन में प्रवेश किए, मेंटल ट्रांसफर। जैसे हम लोग भक्त बनाते हैं तो ये भी मेंटल ट्रांसफर है, प्रचार करते हैं किसी को तो मन शुद्ध होता है, तो उस प्रकार से ये मेंटल ट्रांसफर है। आए भगवान वसुदेव जी के, अब जब भगवान आए, और इसके बीच में ये है कि भगवान कैसे ट्रांसफर हुए देवकी के गर्भ में, इसका भी वर्णन किया गया है कि भगवान मन में पहले आए और उसके बाद में हृदय में प्रवेश किए। यही है कृष्ण भावना की परिपाटी। सर्वप्रथम हम लोग सुनते हैं तो मन कहता है कि हाँ, एक मन ओके करता है कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं। जैसे ये फर्स्ट फिलोसफी इस्कान का या कृष्ण भावना का, गीता का, कि ये हमारा देह है, यदि मेरा देह है तो मैं कौन हूं, यही पहला सिद्धांत है ना, कि मैं ये देह नहीं हूं, ये मेरा देह है। तो नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी कहेगा कि मेरा देह है, तो एक सेकेंड के लिए तो मन सोचेगा ना कि आखिर जब देह मेरा है तो मैं कौन हूं है? तो ये ज्ञान कहां आया? पहले मन में आया। जब मन में यह ज्ञान आएगा तब वह ज्ञान धीरे धीरे बुद्धि के द्वारा फिल्टर होकर के हार्ट में आएगा। जब हार्ट में आएगा तो उस ज्ञान से हार्ट हमारा क्लीन होगा। श्रवण कीर्तन से विधुनोति, श्रवण कीर्तन क्या करता है? हमारे हार्ट को विधुनोति, धुलाई करता है, साफ करता है। तब सुहृत सताम, तब हृदय सुहृत बनता है। तो वसुदेव जी तो विशुद्ध सत्वम इति वसुदेव, वो तो विशुद्ध सत्व है ही वसुदेव जी, उनका हृदय साफ था, उनके हृदय में कोई तकलीफ नहीं था। तो पहले मन भगवान आए और बुम हृदय में आ गए। जब ही भगवान प्रवेश किए हृदय में वसुदेव जी के, वहां पर तो थे ही परमात्मा के रूप में, सब कुछ दैदीप्यमान हो गया। वसुदेव जी बिल्कुल दैदीप्यमान हो गए। वसुदेव जी कोई समान नहीं लग रहे थे, ये विशेष लग रहे थे। जैसे सूर्य हमेशा रहते हैं लेकिन बादल छाया रहता है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। जब बादल छट जाता है तो सूर्य चमकने लगता है, ठीक वैसे ही जब भगवान आए तो वसुदेव जी किस प्रकार से यहां पर स विभ्रत पौरुषम धामम भ्राजमानो यथा रवि दुरासतो अति दुर्धर्षतो भूतानाम संबभूवः संबभूवः। समस्त जीवों के हृदय में भगवान जो विराजमान रहते हैं, वे भगवान जब आए तो वसुदेव जी ठीक वैसे ही लग रहे थे जिस प्रकार से ब्राजमानो प्रकाशमान यथा रवि, जैसे सूर्य प्रकाशमान होते हैं। तो बस ये है कृष्ण कॉन्शसनेस की परिपाटी। हमारे हम लोग के एक भक्त हुआ करते थे वेदव्यास प्रभु, बेचारे नहीं रहे, वो गोविंदा के सेकेंड मैनेजर थे। जब गोविंदा रेस्टोरेंट खुला था 78 में, तो उस समय प्रथम मैनेजर थे मिस्टर लॉर्ड, उसके बाद चित्रकार और वेदव्यास प्रभु की जोड़ी बनी। तो वेदव्यास प्रभु मुझे यह भी याद है कहते थे कि जो व्यक्ति भजन करता है ना तो उसके ललाट पर चमक आ जाता है। मैं कई एक बार देखता था चमक आ रहा है कि नहीं, जो भजन करता है उसके ललाट पर चमक आती है और जो भजन नहीं करता है चमक नहीं रहती है। बात सही है, जो भक्त लोग बाल सेविंग कर लेते हैं तो लगता है कि 100 वाट का बल्ब जल रहा हो। देखो सुन चेतन प्रभु का तो एक्सप्रेस, देखो ब्रजारी प्रभु का उधर बाल लेकिन ललाट पर है। तो ये भजन करने का प्रभाव है, जब भगवान आ जाते हैं तो चमकता है। आप लोग देखना शुरू करना, चेहरा मत देखना मिरर में, ललाट जरूर देखना कि चमक आ रहा है कि नहीं। ये प्रमाण, ये जोक नहीं है, ये प्रमाण है, भागवत में वही कह रहे हैं ना, वही बात यहाँ पर आ रहा है कि जब वसुदेव जी के हृदय में भगवान आए तो दैदीप्यमान हो गए वसुदेव जी। स विभ्रत पौरुषम धामम, जब ये परम पुरुष भगवान जब आए तो उनके तेज से वसुदेव जी ऐसे तेज उनमें दिखाई पड़ा। उपमा दिया गया है भ्राजमानो यथा रवि, ऐसे प्रकाशमान हो गए जैसे सूर्य उदित हो। तो भक्ति करेंगे तो चेहरा में आएगा, चेहरा खिला रहेगा, गोपाल समझ रहे हो ना, हाँ ललाट चेक करते रहना कि प्रकाश आया है कि नहीं। वैसे ही भगवान का सेवा करने से। मुझे याद है कि वापी में जब वेल्सपन में मंदिर का स्थापना किया गया तो बीके जी हमसे पूछे, कभी नया नया मूर्ति का स्थापना हुआ था तो ये कहे कि जुहू में देखता हूँ तो भगवान के चेहरे से एक कांति निकलती है, प्रकाश निकलता है, लेकिन आपने जो स्थापना कराया हमारे फैक्ट्री में यहाँ तो ऐसा प्रकाश नहीं निकल रहा है, यहाँ तो प्रकाश नहीं निकल रहा है। तो मैं कहा कि सेवा करेंगे ना तो सेवा करने से भगवान खुश होते हैं, खुश होंगे तो प्रकाश दिखाई पड़ेगा। तो कुछ साल पहले कह रहे थे कि आपने ठीक कहा था, प्रकाश निकल रहा है, देखने में थोड़ा ये लग रहा है। तो ये बात सही है, भगवान का सेवा करने से प्रकाश निकलता है, भगवान आ जाते हैं। इसलिए हम लोगों को बड़ा सिंसियरली नाम जप करते रहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम राम। अपना भजन साधन हम दूसरे को धोखा नहीं दे सकते हैं, यदि धोखा देंगे तो केवल अपने को देंगे। हम ब्लेम करते हैं, उसने हमको धोखा दिया, उसने हमको धोखा दिया, वो तो बाहर वाला है, लेकिन हम अपने को धोखा देंगे। मानुष जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया भी सखायनो। अब यदि हम भक्त बन चुके हैं इस्कान के तो अपने को धोखा मत दो कोई। 16 माला जप करो फर्स्ट क्लास, साधन भक्ति करो, 8 घंटा सेवा करो। ये 8 घंटा जो सेवा है ये दूसरों के लिए नहीं आप कर रहे हो, भगवान को आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं है, उनके सेवा करने के लिए तो लक्ष्मी लोग हैं। लक्ष्मी सहस्त शतसम ब्रह्म सिव्यमानम, एक नहीं हजार हजार लक्ष्मियां हैं सेवा करने के लिए। हम कोई भगवान पर या मैनेजमेंट पर उपकार नहीं कर रहे हैं सेवा कर करके, हम अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने प्यूरिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो ये मत सोचो अरे मैं बहुत सेवा कर लिया थक गया हूं, नहीं, दिन भर सेवा ही करना पड़ता है तो क्या हुआ, क्या तकलीफ है सेवा करने से। सेवा करनी चाहिए जितना हो सके, उसे हमारा ही भलाई है। पहले ये बात हम लोगों को बताई जाती थी, हम लोगों का सेवा खत्म हो जाता था, दूसरे भक्त प्रभु जी मैं आपका सेवा कर सकता हूं, किसी कपड़ा धो देते, किसी का रूम सफाई करते थे, बड़ा आनंद आता था। आज तो कर लिया तो हमारा सेवा थोड़े है, उनका सेवा है, यही कहते हैं, ये उचित नहीं है। हम लोगों की सेवा सेवन मुखे ही जे वादौ स्वयं प्रत्यदा, सेवा ही एक चीज है जो भगवान को प्रसन्न कर सकता है। सेवन मुखे ही जे वादौ स्वयं प्रत्यदा, अतः श्री कृष्णामादि न भवित ग्राह्यम इंद्रिय। सेवा बहुत जरूरी है, तो सब लोगों को सेवा करते रहना चाहिए। सेवा करना धोबिया पाट लेकर के जैसे कपड़ा धोते हैं ना, तो हम धोएंगे अपने हृदय को, शुद्ध करेंगे, हृदय शुद्ध होगा तो भगवान वहां पर प्रकट होंगे, और भगवान प्रकट होंगे। अलग अलग परसेंटेज है, जितना हम शुद्ध रहेंगे उतना मात्रा में भगवान प्रकट होंगे। यदि 1% शुद्ध है ना तो भगवान 1% प्रकट होंगे। ध्रुव महाराज जैसे 100% शुद्ध हो जाएंगे तो 100%, तो परसेंटेज है, भगवान बड़े बहुत बड़े व्यापारी हैं। क्या हो रहा है संदीप, ने ट्रांसलेट कर रहे हो क्या, हृदय करने के लिए दोनों बात कर रहे हो, राइट, ऐसा ट्रांसलेशन हो रहा है। तो मैं क्या कह रहा था, भगवान व्यापारी हैं। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपदंते ता तथैव भजामि। हम मैं भी गिन कर देता हूं, जितना तू हमको हमारा सेवा करे उतना ही तुम्हें फल दूंगा, उतना ही भगवान मेहनत आना देंगे जितना हम मेहनत करेंगे। मेहनत नहीं कर कुछ भी नहीं मिलेगा है? तो सभी भक्तों को चाहिए सेवा में लगे रहना। और इस प्रकार से जैसे वसुदेव जी प्रकाशमान हो गए, दैदीप्यमान हो गए, वैसे हम लोग भी संबभू। ह मतलब निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। ह मतलब निश्चयता के लिए आया। हा तो हम लोगों को यदि सही में कृष्ण कांसस बनना है तो हमें चाहिए अहर्निश कृष्ण का सेवा करना। ततो जगन मंगलम अचुत्यांश समाहितम सूरसुतेन देवी दधार सर्वात्मा आत्मकंबुभो काष्ठाय यथानंदकरम मनस्तत तत्पश्चात परम तेजस्वी संपूर्ण जगत के लिए सर्व मंगलमय समस्त ईश्वरों से युक्त भगवान अपने स्वांशों समेत वसुदेव के मन से देवकी के मन में स्थानांतरित कर दिए गए। इस तरह वसुदेव से दीक्षा प्राप्त करने से देवकी सबों की आदि चेतना समस्त कारणों के कारण भगवान कृष्ण को अपने अंतःकरण में धारण करने के कारण सुंदर बन गई, जिस तरह उदित चंद्रमा को पाकर पूर्व दिशा सुंदर बन जाता है। तो भगवान के आगमन का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि भगवान सर्वप्रथम वसुदेव जी के मन में आए, और वसुदेव जी का उपमा दिया गया है कैसे प्रकाशमान हो गए, यथा रविम है सूर्य के समान दैदीप्यमान हो गए। और यहां पर देवकी का कि कैसे मेंटल ट्रांसफर, मैं इसको बता चुका पहले कि दीक्षा के द्वारा, यानी उसी बात को वसुदेव जी बताए। गोपाल चंपू में इसका वर्णन किया गया है कि नंद बाबा सुबह उठे और नंद रानी को, देखिए यहां पर और वहां पर थोड़ा अंतर है कि यहां पर भगवान आए वसुदेव जी के मन में और वसुदेव जी वहां से ट्रांसफर किए देवकी के हृदय में। गोपाल चंपू मिश्रपाल जी गोस्वामी वर्णन करते हैं कि उसी रात भगवान नंद बाबा के भी मन में आए और देवकी सॉरी माता जसोदा भी स्वप्न दिखी कि मैं मां बनने वाली हूं, मैं मां बनने वाली हूं, बुढ़ापे में स्वप्न देखी कि मैं आज मां बनने वाली हूं। और जब सुबह हुआ तो दोनों दोनों स्वप्न देखे थे, दोनों का स्वप्न जो था मंगलमय स्वप्न था। यशोदा स्वप्न देखी थी कि मैं मां बनने वाला हूं, एक श्यामला सलोना कुमार जन्म लिया है, उन्होंने वो स्वप्न देखा था। और इधर नंद बाबा के मन में भगवान प्रकट हुए थे, आए थे। तो नंद बाबा और यशोदा दोनों आपस में वार्तालाप कर रहे थे, तो क्या कोइंसिडेंट है। और इस प्रकार से नंद बाबा ट्रांसफर किए कृष्ण को यशोदानंदन के रूप में। यहां पर देवकी का वर्णन किया गया है, प्रथम श्लोक में वसुदेव जी का वर्णन किया गया है और यहां पर श्लोक 18 में माता देवकी का वर्णन किया गया है। ततो जगन मंगल अच्युतांश, जगत के कल्याणार्थ जन कल्याण के लिए भगवान अच्युत अपने अंश के साथ में, अच्युतांश क्या सुंदर शब्द आया है, अच्युत अंश, भगवान अच्युत हैं जो कभी च्युत नहीं होते हैं। हम सब लोग च्युत हैं, हम सब पतित हैं, गिरे हुए हैं, भगवान जो कहते हैं वे करते हैं। भगवान ने कहा है परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी जुगे जुगे, ये तीन काम करने के लिए वे भगवान अपने अंश के रूप में आए। ये तीनों काम यही किए हैं, तीनों काम यही किए हैं। परित्राणाय साधुना, साधुओं का परित्राण भगवत गीता का उपदेश सुना करके इत्यादि, विनाशाय च दुष्कृतम, असुरों का वध कर कर करके। श्याम सुंदर ब्रजेंद्रनंदन, श्याम सुंदर वो तो आनंद विहारी हैं, उनको मारपीट से कोई मतलब नहीं है। बाजी गोस्वामी कहते हैं कि जब पुतना जब आई थी तो भगवान ने भगवान शिव को कहा कि विष पान करना आपका काम है, हम तो विष पान नहीं करने हैं, हम तो दूध पीने आए हुए हैं। तो विष पान करने का काम भगवान शिव की और दूध पान करने का काम भगवान कृष्ण किए। जितने भी असुर मारे गए हैं उन लोगों को वासुदेव रूप में भगवान मारे हैं, श्याम सुंदर रूप में तो केवल आनंद विहार किए हैं, वो आनंद कंद हैं, आनंद दिए हैं, रास इत्यादि वे किए, माखन चोरी इत्यादि भी वे किए। जितना भी लीला है ब्रज में असुरों का भी को वध करना भी भगवान किए, लेकिन वासुदेव के रूप में गिरिराज गोवर्धन धारण स्वयं किए हुए, वहां पर वासुदेव नहीं थे। एनीवे, तो जगन मंगल अच्युतांश, अच्युत अंश, भगवान अच्युत हैं, भगवान जो कहते हैं वो करते हैं। भगवान हम लोगों के लिए गीता का उपदेश सुनाना चाहते थे तो अर्जुन के मन में भगवान आ गए और अर्जुन ने कहा, सेन जोरुर्भयोर मध्य रथम अस्थापित मे अच्युत, हे अच्युत आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो ताकि मैं देखूं कि किन से लड़ाई करना है। यदि वो वहां पर कृष्ण कहते, मोहन कहते, मुरारी कहते, माधव कहते तो कृष्ण कह सकते अर्जुन डन बी फुल, अब क्या देखना है, संघ बच चुकी है, उठाओ धनुष और चलाओ बाण, अब क्या देखना है। लेकिन अच्युत शब्द कहवा करके भगवान अपने वाणी पर विराम दे दिए, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मैं केवल रथ का सारथी बनूंगा। तो जब मालिक कहता है, प्रकाश जी जब ड्राइवर को कहो कि हमें मंदिर जाना है तो ड्राइवर थोड़े खार चिमखाना लेकर जाएगा, मंदिर लेकर आएगा ना, ड्राइवर है। तो अच्युत कहने का मतलब कि जो मैं कहता हूं वही करो, अपना कुछ सलाह मत दो। और अर्जुन का रथ ला करके ऐसे खड़ा किए भगवान, खड़ा ही नहीं किए, वे कहे किसको देखना चाहते हो, देख लो ये हैं तुम्हारे पितामह, ऐसे पार्किंग किए जहां से दिखाई पड़ रहे थे सामने पितामह भीष्म गुरु द्रोण, कह किसको दिखाई, ये देखना चाहते हो, यही लोग हैं। वहीं से शुरू हुआ ना अर्जुन का मुंह, अर्जुन का मुंह शुरू हो गया। और जब पूरा गीता का उपदेश खत्म हो गया तब वही अर्जुन कहते हैं, कृष्ण आप बहुत बड़े खिलाड़ी हो, बहुत बड़े खिलाड़ी हो, क्या खेल खिलाया आपने हमको, नष्ट मोहो स्मृति लब्धवा तत्प्रसाद अच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, हे कृष्ण हे अच्युत आपके ही कृपा से मैं मुंह में पड़ा और आपके ही कृपा से मैं बाहर निकला। दोनों जगह अच्युत शब्द आया हुआ है। तो पूरा गीता शुरू हुआ अच्युत शब्द से और खत्म हुआ अच्युत शब्द से। तो यहां पर भी अच्युतांश कहने का मतलब यह समझना चाहिए कि भगवान कहे हैं कि भक्तों का मैं रक्षा करूंगा, वसुदेव देवकी माता पृथ्वी अंश भक्तों का रक्षा करने के लिए भगवान अपने अंश के साथ में अच्युतांश समाहितम समाहितम सूर सुतेन देव देवी ही, महाराज सुरसेन के पुत्र वसुदेव से वे देवकी के गर्भ में यहां पर देवकी को देवी शब्द कहा गया है। क्या सुंदर शब्द है, जो देने वाली है, जो देने वाली है, जो पूजनीय है। देवता जो देने वाले होते हैं, देवी मतलब देने वाली। इसलिए स्त्रियों को देवी कहा जाता है, वो देने वाली होती है, खाना खिलाती है, कुछ भी। पति ना भी बोल देता तो अभी साइड से दे देती है। तो यहां पर देवकी को देवी कहा गया है। दधार सर्वात्मकम आत्मभूतम। अब यहां पर उपमा दिया गया है कि जब भगवान देवकी के घर में आए तो देवकी कैसे लग रही थी, उसका वर्णन किया गया है। ठीक वैसे ही जैसे पूर्व क्षितिज शोभायमान हो जाता है जब पूर्णिमा का चांद उदित होता है। तो जब भगवान कृष्ण आए वसुदेव जी के मन में, तो उनका उपमा सूर्य से दिया गया, और जब देवकी के मन में आए, देवकी के गर्भ में आए, तो इनका उपमा चंद्रमा से दे गया। इसका मतलब कि पुरुष लोग होते हैं ना, थोड़ा कड़ा होते हैं, और स्त्रियां जो होती हैं उनसे सौम्य होना चाहिए। खैर आजकल तो दूसरा बात है, लेकिन स्त्रियों को सौम्य होना चाहिए, चंद्रमा के समान शीतलता प्रदान करने वाली वो स्त्रियां। इसलिए बहुत सुंदर उपमा यहां पर सुखदेव गोस्वामी दिए हैं। देवकी का तुलना किए हैं चंद्रमा से, और वसुदेव जी का तुलना है, सूर्य के प्रकाश से वसुदेव जी का, और क्षितिज जो शोभायमान हो जाता है चंद्रमा से, उसे देवकी का यहाँ तुलना किया गया। खैर ये तो तुलनात्मक श्लोक है। उसके बाद में अब क्या हुआ, आगे का श्लोक बताया गया है कि केवल देवकी और वसुदेव ही ऐसे नहीं हुए। जहां पर वे लोग थे जो कारागार, वो भी प्रकाशमान हो गया, विराजमानम, सब प्रकाशमान हो गया। और जब प्रकाशमान हो गया तो यह बात सर्वत्र फैलने लगी। वॉचमैन के पास चले गए तो वॉचमैन, जितने पहरेदार लोग थे, आपस में बात करने लगे। वहां से पूर्ववासियों के पास से बात गया कि देवकी बसदेव तो बहुत दैदीप्यमान लग रहे हैं, देवकी बहुत दैदीप्यमान लग रही है, अब आठवां गर्भ आ गया है। लेकिन भगवान के आते ही सब में जो बैर भाव था वह नष्ट हो गया था। देवकी को देख करके यही वॉचमैन लोग, पहरेदार लोग, पहले टाइट थे, प्रणाम कर रहे थे, क्योंकि भगवान आ गए थे ना। तो जो भक्त होता है वो सबके लिए पूजनीय होता है। धीर अधीर जनक प्रिय प्रिय करो, सबको प्रसन्न करने वाले भक्त होते हैं। तो पूर्ववासी लोग भी आने लगे देवकी का दर्शन करने के लिए, भगवान का दर्शन करने के लिए। यह बात कंस तक पहुंचा, कंस का मति भी शुद्ध हो गया, वो भी आना चाहता था और आया भी। जब आया तो देखा वो तो कारागार है, बिल्कुल दैदीप्यमान है, तो चकाचंद हो गया कंस, अरे ऐसे कैसे हो सकता है। और देवकी को जब देखा तो देवकी को देखते ही वो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो हमको भी आनंद आएगा, भगवान को भी आनंद आएगा, दोनों का आनंद आएगा। और जो जोर जबरदस्ती करते हैं यदि, तो भगवान के लिए है सेवा, ज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जत। कैसे भी सेवा की जाती है तो फल तो जरूर मिलेगा, फल जरूर मिलेगा है। कोई नाम कैसे भी जपता है, फल तो जरूर मिलेगा। ज्ञानाद अथवा अज्ञानाद, जानकर या अनजान में, कैसे भी जोर जबरदस्ती भी कोई धक्का दे दिया, कोई गिर जाए और भगवान के चरणों में प्रार्थना कर दे, ये कहलाता अज्ञात सुकृति। तो फायदा तो होता ही है। चित्रकेतु उपाख्यान में वर्णन किया गया है ना, नहीं कहां पर वर्णन है कि जबरदस्ती वो किया गया था लेकिन उसका परिणाम, विमान गिर गया, चित्रकूट में है विमान गिर पड़ा था, चाहे एक ए भी था, एनीवे कैसे भी यदि कोई सेवा करता है तो परिणाम प्राप्त होगा जरूर, लेकिन अनुकूल भाव से करेंगे तो अच्छा परिणाम होगा। हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं है सेवा करने की, मेन चीज यह है, हम लोग तो यहां मालिक बन करके आए हैं, सेवक लेकिन मालिक बन के आए हैं। यदि सेवक की भावना रहेगी तब नहीं लगे कोई जबरदस्ती कर रहा है, हमें मालिक की भावना है जो कि आर्टिफिशियल है, उस मालिक की भावना खत्म करना। मैं कई बताया ना कि गर्ग मुनि प्रभु प्रभुपाद जी से पूछे कि आप बोलते हो कि हम आपको प्रणाम करें, हमको तो प्रणाम करने का मन नहीं कर रहा है, आप फोर्स कर रहे प्रणाम करने के लिए। प्रभुपाद कहे करते रहो, मन करने लगा एक दिन तो करते रहना चाहिए, जबरदस्ती पर करते रहो मन करेगा एक दिन। अभी हम मालिक भावना में अच्छा नहीं लगता है, या सेवक भावना में हो जाए अच्छा लगेगा। और कोई प्रश्न? यस,
हरे कृष्णा प्रभु जी। आपने लास्ट में बताया कि देवकी के गर्भ में जब भगवान का आने का टाइम हुआ तो एक दिव्य प्रकाश से वो प्रकाशित हो गई, उनके शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा, कमरों में दिव्य प्रकाश आया, यहाँ तक कि आसपास के गार्ड्स भी प्रकाशमान हो गए। तो इससे आपकी वही बात साबित होती है जो थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जिस मंदिर में भगवान के विग्रह का बहुत अच्छी सेवा की जाती है तो विग्रह से एक 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 दिव्य प्रकाश निकलने लगता है, और यहाँ तक कि उस दिव्य प्रकाश इतना मतलब के प्रभाव से उनको सेवा करने वाले भक्तों का और उनके नाम जप करने भक्तों के ऊपर के चेहरे भी चमकने लगते हैं। पर ये चेहरे की चमक इसका पैरामीटर इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कितनी अच्छी सेवा कर रहा है, कितनी अच्छी नाम जप कर रहा है।
प्रश्न क्या है?
मेरा प्रश्न आज का ये है कि शुरुआत में आपने बताया कि पहले औरतों का गर्भपात होना भी एक पाप माना जाता था, तो बिना पति का गर्भ धारण करना क्या होता था, जबकि उस समय वसुदेव जी जेल में थे और रोहिणी जी नंद के महल में थी।
पहला नंबर आपको समझना चाहिए कि वसुदेव जी जेल में नहीं थे, वसुदेव जी अपने राजमहल में थे और रोहिणी जी वहां पर जाया करती थी। तो जो आप सोच रहे हो आपकी धारणा गलत है, वसुदेव जी को जेल में डाला गया अब सातवें गर्भ के बाद, जब आठवां गर्भ जब आया उस समय डाला गया, हाथ में बेड़िया पहना दी गई, जेल में डाला गया, उसके पहले नहीं। ये आप मूवी देखे होंगे कि जेल में पहले दिन से डाल दिया गया है उसी को, यहाँ भागवतम में ऐसा नहीं है, वो अपने महल में थे। हाँ सुरक्षा थी कि कहीं भागने ना पावे, सुरक्षा थी, टाइट सिक्योरिटी थी, लेकिन हाउस अरेस्ट थे, महल में थे, और वहाँ पर रोहिणी जा सकती थी, अन्य भी पत्नी आती थी। ऑल राइट, ग्रंथ राष्ट्र भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।